الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فنبي سيدي الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان، کہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں. غزوہ احد میں انہوں نے شہادت کی سعادت پائی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رخسار مبارک میں زخم لگا اور اس میں سے خون بہنے لگا تو اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے بے چین ہو اور جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخم میں سے نکلنے والے خون کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کیا. جس وقت وہ خون صاف کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ جو کہ یہ جو آپ چاٹ کر کے صاف کر رہے ہیں، اس خون کو جو ہے وہ کلی کر دو، یعنی نکال دو گا. انہوں نے جواب میں عرض کیا: اللہ کی قسم، میں تو اس کو نہیں کلی کروں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من خالط دمہ دمی فہو فی الجنہ، کہ جو آج فل فنار علیہ آرام، کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اس کے اوپر جنت کی آگ حرام ہے. جن حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے ایک یہ بھی. اور غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کو حضرات صحابہ کے ساتھ احد سے مدینہ کی طرف لوٹے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 13 साल से कुछ ऊपर थी। ये उन सहाबा में से हैं जिन्होंने गज़वे उहुद के मौके पर गज़वे में शरीक होने के लिए अपने आप को पेश किया था, लेकिन उनकी उम्र 15 साल की न होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको गज़वे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत बरा इब्न आज़िम और हज़रत राफ़े इब्न खदीब, ये इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्हीं में से। फरमाते हैं कि जब हमने सुना कि अब जंग ख़त्म होने के बाद सलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा लौट रहे हैं, तो कहा हम मदीना से निकले बाहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे जाने के लिए, मैंने देखा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बच्चे थे 13 साल की उम्र थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार तशरीफ ला रहे हैं और आपके दोनों रुखसार के अंदर जो जख्म था जिसको बाद में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा धोकर साफ किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत में ये तफसील मौजूद है। और जिस वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस जख्म को धो रही थी तो उसमें से खून बहना बंद नहीं हुआ, तो चटाई का एक टुकड़ा ले करके उसको जला कर उसकी राख दोनों जो है इसमें रुखसार में भर दी ताकि वो खून बहना बंद हो जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसार मुबारक पर एक दिरहम की बमिकदार जो है सियाह निशान थे दोनों, और आपकी पेशानी मुबारक पर भी जख्म था और आपका होंठ मुबारक भी जख्मी हुआ था, निचला होंठ वो निचला दंदाने मुबारक जो है अगले दो दांत के साथ वाला वो उसका कुछ हिस्सा शहीद हुआ था, उसकी वजह से आपके होंठ मुबारक पर भी असर पहुंचा था। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक को बोसा दिया। आप क्योंकि वो घोड़े पर सवार थे, क्या मुझे देख कर हुजूर ने फरमाया साहब साल हो, मैंने कहा अजल या रसूलल्लाह, का जी हाँ, का आजरक अल्लाह फी अबीक, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप के मामले में तुमको अजर और सवाब अता फरमाए क्योंकि वो शहीद हो गए थे। तो बहरा उस वक्त उनकी उम्र 13 साल से कुछ ऊपर थी, उस गया सिरारे सहाबा में उनका शुमार होता था। उनके वालिद और उनकी वालिदा हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भी सहाबिया हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ गज़वे उहुद के बयान करने के लिए बहुत सारे उनवानात अबवाब की शक्ल में कायम किए हैं, एक उनवान उन्होंने कायम किया है बाबो ज़िक्र उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा, और उसमें उन्होंने वो रिवायत पेश की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा बहुत सारी रंगीन चादरें आई जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की औरतों के दरमियान तकसीम किया ताकि वो उन चादरों को ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल करें। आखिर में नींदा किस्म की चादर बच गई तो मजलिस में जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी उम्मे कुलसुम जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी उनको दे दी गई। उस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी हकदार तो उम्मे सलीम है जो गज़वे उहुद के मौके पर मशकीज़े में पानी भर भर लाकर मुजाहिदीन को पिलाती थी। ये हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की والدہ ہوتی ہے، یا ان کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اور شروع صحابہ کے ابتدائی دور میں ان کا شمار صغار صحابہ میں، یعنی کم عمر کے جو صحابہ ہیں ان میں ہوتا تھا. البتہ بعد میں صحابہ کے دور آخر میں انہوں نے چونکہ بڑی محنت سے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے مسائل اور احکام کو بیان کرنے کے سلسلے میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ گویا مسائل کے سلسلے میں مرجع خلائق بنے ہوئے تھے. چنانچہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث کی بہت ساری روایتیں منقول ہیں، جن کو حضرات محدثین کی اصطلاح اور ان کی مخصوص زبان میں مکثرین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے ہزار سے زیادہ حدیثیں ذخیرۂ حدیث کے اندر آئی ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. ایسے کل سات صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر. یہ کل سات صحابہ ہیں جن کو حضرات محدثین نے مکثرین میں شمار کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے ابتدائی دور میں صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ان کی ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے کاموں میں مشغول تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے سلام کیا حاضری کی اجازت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول تھے اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ سلام کیا اور جواب نہیں ملا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم تھا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ کوئی آدمی جب کسی کے پاس جاوے تو اندر جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کے واسطے سلام کرے، اگر پہلے سلام پر جواب مل گیا اور اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ سلام مہلت دے، تاکہ وہ کوئی مشغول ہو تو اپنی اس مشغولی کو پورا کرتے ہوئے. اسی لیے آداب میں بتایا کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور ڈور بیل لگائیں، تو ایک مرتبہ ڈور بیل بجانے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ لگاتار بجائے چلے جا رہے ہیں جیسے کوئی وارنٹ لے کر کے آئے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ جو ہے نا وہ ایسا لگاتار ایسا زور سے دباتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا کر رونا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ اسلامی آداب کے خلاف، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. وہ ڈور بیل بھی جو ہے وہ بہت ہلکے انداز میں گھر والوں کو پتا چل جائے کہ کوئی آدمی باہر ہے آنا چاہتا ہے، اس انداز میں بجانا چاہیے، وہ بھی زیادہ زور سے نہیں. بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بیماروں کو بڑی مشکل سے کبھی آنکھ لگتی ہے اور ایسی آواز سن کر پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ نیند نہیں آتی. دوبارہ وہ پہلی مرتبہ کے بعد تھوڑی مہلت دے کر پھر دوسری مرتبہ سلام کرے. آج کل جسے ڈور بیل ہے وہ بجا سکتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے. اور پھر دوسری مرتبہ کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد تک اجازت نہ ملے تو تیسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ نہ ملے تو واپس لوٹتا ہے. وہاں جو ہے اڈا جمانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ بس اب تو जाकर के रहूंगा। बांधव जो है ना वो हटने का नाम बजाते रहे, हालांकि सैयद इसकी इजाजत नहीं दी। तीन मरतबा के बाद अगर जवाब न मिले तो खुद ही वापस लौट जाना चाहिए। मालूम नहीं आदमी है या नहीं, किसी ऐसी मशगूली के अंदर मशगूल है कि वो इस वक्त आपको मिल नहीं सकता। कुछ कुरान में है कि जब इजाजत चवैया कीला लकुम रजू फर्ज हुआ उसका, इजाजत हासिल करने के लिए जब कहो और सामने वाला घर के अंदर से आपको यूं कहे कि मैं इस वक्त आपकी मुलाकात नहीं कर सकता, आप वापस तशरीफ ले जाएं। पैदा केला लकुम इर्जू, तो भाई ताला फरमाते हैं फर्ज दो इर्जू हैं। पहला इर्जू तो वो है वापस जाओ जो घर वाला कह रहा है, और दूसरा इर्जू वो है जो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं फर्ज। जब वो कहे वापस जाओ तो भाई ताला फरमाते हैं तुम वापस इसी में तुम्हारे लिए भलाई। आप एक हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हमारे कुरान में कि ऐसे लोग भी गुजरे हैं। एक अल्लाह के बंदे ऐसे थे कि मैं अपने बहुत से शनासाओं के घर इसलिए गया कि इजाजत तलब करूं और वो मुझे जवाब नहीं कहें कि वापस जाओ, तो मैं उनके ये कहने पर वापस जाऊं ताकि अल्लाह के इस हुक्म पर ऐसे भी। और हमारा आपका हाल यह है कि किसी दोस्त के घर चले गए और खुदा न खास्ता किसी माजूरी की वजह से उसने कह दिया वापस जाओ, शायद जिंदगी भर फिर उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। शरीयत ने तो अजीब गरीब आदाब बदलाए। खैर तुम्हारा मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की मुलाकात किए थे, इजाजत हासिल करने के लिए सलाम किया जवाब नहीं मिला, फिर दूसरी मरतबा किया जवाब नहीं मिला, फिर तीसरी मरतबा किया तो वापस लौटे। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम बड़ा दिलचस्प वाकया आदमी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो खुद नबी करीम इसका एहतमाम करते थे। एक मरतबा एक सहाबी के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आपने इजाजत हासिल करने के लिए सलाम दिया। अब सलाम में क्या होता है, वह दुआ दी जाती है कि तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। तो इजाजत हासिल करने के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो सहाबी घर में मौजूद थे सुन रहे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इजाजत हासिल करने के लिए सलाम कर रहे, फिर भी वो खामोश रहे। अगर मैं खामोश रहूंगा तो दूसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फरमाएंगे, वह इस तरह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं दूसरी मरतबा मिलेंगी। ये देखो उनकी सोच, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया वो भी सुन रहे हैं, अंदर से जवाब भी कैसे दे रहे हैं, दरवाजे के पीछे खड़े हैं लेकिन हुजूर को नहीं मिला। फिर तीसरी मर्तबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और आप तीसरा सलाम करके जब वापस लौटना चाहते थे जल्दी से निकले और निपट गए। अल्लाह के रसूल सुन रहा था लेकिन मैंने इस हिरस और लालच में कि आपकी दुआएं मुझे मिल जाए मैंने जो है ये जवाब नहीं दिया था। खैर दोबारा हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये मालूम था इसलिए उस पर अमल करते हुए लौट गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब फारिग हुए अपने काम से तो काबे में अभी अब्दुल्लाह इब्न कैस की आवाज सुन रहा था। ये अब्दुल्लाह इब्न कैस जो है ये हजरत मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला का नाम है। میں ابھی ان کی آواز سن رہا تھا, بلا تو جان چکے تھے وہ لوگ, ان کو بلا کر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہاں بھی اس سے حاضری کی اجازت چاہنے کے لیے سلام کر رہے تھے, واپس چلے گئے. اب اگر وہ یوں کہتے کہ آپ کو مشغول دیکھ کر واپس چلا گیا تو کوئی بات نہیں تھی, بلکہ انہوں نے یوں کہا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ کوئی آدمی جب کسی کے پاس جائے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کرے اور جواب نہ ملے تو دوسری مرتبہ, ورنہ پھر تیسری مرتبہ, نہیں تو واپس لوٹ جائے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے. کوئی معاملہ ان کے سامنے جب پیش ہوتا اور کوئی یہ کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, وہ فوراً مطالبہ کرتے تھے کوئی دوسرا آدمی لاؤ جو یہ کہے تو اس نے بھی یہ بات سنی. چنانچہ یہاں اصول حدیث کے مومن علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے دو راوی کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں. تو بارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق ان سے مطالبہ کیا کہ یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کسی اور نے بھی سنی ہے, لاؤ قوالا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم تھا نہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی یہ چیز معلوم ہے یا نہیں. وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر کا اگر مطالبہ پورا کیا نہیں جائے گا تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی سخت طریقہ اپنایا جائے. وہ گھبرائے ہوئے مسجد نبوی میں آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس لگا ہوا تھا اور انصار اس میں بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے کہا کہ بھائی تم میں سے کسی نے یہ روایت سنی ہے؟ تو حضرت ابو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں اور باقاعدہ صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دینے کا کام بھی کرتے تھے, ان کا بڑا اونچا مقام ہے ان اعتبار سے. انہوں نے کہا کہ ہاں اس مجلس میں جتنے بھی ہیں ہم انصار سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور آپ کا یہ ارشاد سنا ہے, تو بھائی مہربانی کرو نا کوئی آؤ میرے ساتھ اور امیر المومنین کے پاس آ کر کے گواہی دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے سزا دیں. یہ سن کر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے, آپ تو ہنس رہے ہیں میرے اوپر آگے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس مجلس میں جتنے ہیں سب نے سنا ہے, لیکن اس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ امیر المومنین کے پاس گواہی دینے کے لیے بھیجتے ہیں. اور وہ سب سے چھوٹا آدمی کون تھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علمی اعتبار سے ان کا مقام اونچا ہے اور صحابہ کے دور آخر میں وہ مرجع تھے مسائل کے باب میں, وہی اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا جس نے حلال غذا کھائی وعمل فی سنتی اور سنت کے مطابق عمل کیا وعمل الناس بوائقہ اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی غذاؤں سے محفوظ رہے دخل الجنہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تین باتیں ارشاد فرمائی جنت میں داخل ہونے کے لیے, بہت مختصر سا نسخہ شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یہ سن کر مجلس میں ایک آدمی تھا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس کثیر, یہ چیز تو آج کل لوگوں میں بہت ہے, یعنی آپ جیسا فرما رہے ہیں जो आदमी ये तीन काम करता वो जन्नती है। आजकल तो ऐसे लोग बहुत है, जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ऐसे लोग ज्यादा नहीं होंगे तो कब होंगे। तो उसको सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा जमानों में भी ऐसे लोग होंगे, चाहे इतनी तादाद में ना हो लेकिन होंगे। बारह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने के लिए तीन बातें इरशाद फरमाई। पहली बात फरमाई, मन अकाला पैया, जिसने हलाल गुजा खाई। ये हलाल गुजा जो है ये इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ बड़ी ताकीद फरमाई कि आदमी अपनी कमाई को हलाल रखे ताकि उससे जो गुजा हासिल की जाए वो भी हलाल। यहाँ हलाल का मतलब ये जो हलाल वाला जो दीदा खरीदी वो हलाल दीदा यहाँ मुराद है। बारह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल दीदा की बड़ी ताकीद फरमाई। एक इरशाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, साहिब मिश्कात ने नकल किया है, طلب الحلال فریضتن بعد الفریضہ، کہ اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد، بنیادی فرائض نماز روزہ حج زکاۃ شہادتیں، یہ جو پانچ ارکان سمجھے جاتے ہیں، گویا اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ جو ہے وہ حلال کمائی کا حاصل کرنا، گویا آدمی اپنی کمائی کو حلال، یہ کمائی کا حلال ہونا یہ شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی کا بناؤ اور بگاڑ اور اس کا صلاح اور فساد جن چیزوں کے اوپر موقوف ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کی کمائی کیا ہو، حلال ہو۔ اگر کمائی لوگوں کی حلال ہے تو انشاءاللہ وہ معاشرہ بہت ساری اخلاقی برائیوں اور گناہ کے کاموں سے محفوظ ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ کمائی کے معاملے میں جو غفلت برتی جاتی ہے وہ لوگ کماتے تو ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں قیامت کے روز آدمی کے پاؤں اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس کو سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال تو اس زندگی کے متعلق ہوگا کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی اس کو کہاں استعمال کیا۔ وَن شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اور زندگی میں بھی جوانی کا زمانہ جو ہے وہ بالکل اعلیٰ ٹاپ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو نعمت عطا فرمائی وہ کئی ادوار پر وہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو جوانی کا دور ہے وہ زندگی کا سب سے اعلیٰ، کہ اس میں آدمی کی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ عروج کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اس کے متعلق الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں لگائے۔ وان مال ہی مین اینا اکتصاب، اور مال کے متعلق، مال کے متعلق دو سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، کمانے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا کیا وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا،
حلال تھا یا اس میں کوئی گڑبڑی تھی, اور وہ فیما انفقہ اور کہاں اس کو خرچ کیا گیا. حلال طریقے سے کمانے کے بعد بھی اس مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں بندے کو آزاد نہیں چھوڑا گیا, بلکہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی شریعت کی طرف سے باقاعدہ ہدایتیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو, یہ تو ایک امانت ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ مال جس طرح چاہیں خرچ کریں, حالانکہ یہ ان کی سوچ درست نہیں ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, ایک امانت ہے جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے, تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو کل کو قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی. شریعت تو ہر چیز میں آدمی کو گویا ہدایتیں دیتی ہے. نماز کے اندر وضو جیسا وضو, اس کے اندر پانی کو زیادہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. پانی کو وضو میں زیادہ استعمال کرنے سے منع کیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذا الصرف يا سعد, اے سعد یہ فضول خرچی کیسی. مسجدوں کا جو پانی ہے نا وہ تو وقفہ کا پانی ہے, ہمیں اپنی ضرورت میں وضو استعمال کریں, بالٹی نیچے رکھ دیجیے, کم سے کم دو ڈھائی بالٹیاں تو کہیں گئی نہیں, زیادہ ہی استعمال ہوگا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضوی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں چھتا کے اندر حضرت کا حجرا تھا اور وہاں باہر جو ہے سہن ختم ہوتا ہے وہاں نل لگے ہوئے, کبھی حضرت کو نل پر وضو کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. حضرت کا لوٹا تھا, حضرت اپنا لوٹا لے کر آتے تھے اور اسی کو نل سے بھر کر وہی نالی پر بیٹھ کر لوٹے سے آپ بزرگ فرماتے اپنے بزرگوں کو. یعنی گویا ہمارے اکابر کے پاس جب ہم رہیں گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تمہارا میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی جائز کمائی کو بھی اپنے جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. उसी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने को इसराफ कहते हैं, फजूल खर्च। कुरान पाक में दो लफ्ज आए हैं, एक तो इसराफ, कुलू अशरबू वला सुसरिफ, खाओ पियो और आगे मत बढ़ो। इसराफ यानी किसी जायज काम में आप माल को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसका नाम है इसराफ। और एक है तबजीर, यानी नाजायज काम में अगर आप माल को इस्तेमाल करते हैं तो उसको अरबी जबान में तबजीर कहते हैं। और कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ये तबजीर यानी वो फजूल खर्ची, गोया कौन सी हराम काम में इस्तेमाल करने वाले तो शैतान के भाई। दोबारा शरीयत मुतहरा, आप अगर जायज तरीके से माल कमाते हैं, आपके जायज तरीके से कमाए हुए उस माल को भी अपनी जरूरत में जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती, ये इसराफ है। हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने अपनी जरूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि कोई आदमी अपनी जरूरत लेकर के अगर आता तो आपके पास उस जरूरत को पूरा करने का कोई बंदोबस्त होता तो पूरी आप अपने माल से पूरी फरमा देते थे, न होता तो कभी घर में पूछवाते थे, वहां से हो गए खाने की कोई चीज खाना है तो ठीक, नहीं तो कभी खुद उसको यूं कहते थे तुम किसी से कर्ज ले लो, बाद में जब हमारे पास माल आएगा तो हम आपका कर्जा अदा कर देंगे। ये सलाजम की सखावत भी अजीब भरी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप सलाजम के पास माल आए, बड़ी मुद्दा 1,00,000 दिरहम, बहुत बड़ी पूरा ढेर होगा। सुबह से नबी करीम सलाजम को बांट लिया, बांटते 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 खत्म हो गए। खत्म होने के बाद एक आदमी आया और उसको देने के लिए नबी करीम सलाजम के पास कुछ था नहीं। आप सलासम ने उसको फरमाया कि तुम कर्ज ले लो, बाद में हमारे पास जब वसत होगी हम आपका कर्ज अदा कर देंगे। ये मंजर देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको माल जब तक दिया आपने उसको खर्च किया, अब जब आपके पास माल नहीं रहा तो बिला वजह का बोझ आप अपने ऊपर क्यों बर्दाश्त करते हैं, यानी इसको ये क्यों कहते हैं कि तुम ले लो बाद में तुम्हारा कर्ज हम अदा कर देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात अर्ज की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नागवारी के आसार मालूम हुए, गोया उनकी ये बात हुजूर को अच्छी नहीं लगी। शमाइल में ये रिवायत मौजूद है। तो ये मंजर देख कर एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अनफिक वला तख्श मिन जिनार शेख लाला, कि अल्लाह के रसूल खूब खर्च कीजिए और अफशा के मालिक से कमी का डर न रखिए। जब उन अंसारी साहबी ने ये बात कही तो नबी करीम सलाम का चेहरा खिल गया और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे यही हुक्म दिया। तो बहरा हुजूर सलाम की आदत शरीफा ये थी, अपने पास हुआ तो अपने पास से, नहीं तो इस तरह के। और कभी ऐसा भी होता था कि अपने वसत और ताकत वाले जो सहाबा होते थे उनके पास भेज देते थे कि भाई तुम चले जाओ फलाने के पास, वो तुम्हारी ये जरूरत पूरी कर देंगे। एक मरतबा एक आदमी आया और उसने अपनी जरूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की, आपके पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो आपने अपनी आदत शरीफा के मुताबिक उसको यूं कहा कि तुम उस्मान के पास चले जाओ, यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि वो मानदार सहाबा में से थे, अब उनके पास चले जाओ और उनसे कहो चनाचे हुजूर की हिदायत के मुताबिक वो आदमी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। मगरिब के बाद का वक्त था, उनके घर के दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसके कान में कुछ बुलंद तेज आवाज पड़ी। ऐसा महसूस किया उसने कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को जरा तेज लहजे में कोई बात कह रही। उसने कान लगाया तो सुना کہ وہ حضرت اپنی بیوی کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ یہ چراغ کی جو بتی ہے وہ پرانا چراغ ہوتا ہے یاد کرتے ہیں لائن سے وہ پرانا چراغ اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے اس کے اوپر آگ لگائی جاتی اس کو بتی ڈیویٹ کہتے ہیں گجراتی کے اندر اس کو اگر آپ اونچی رکھیں گے تو تیل زیادہ جلتا ہے کہ اس بتی کو اونچا کائے کو رکھا ہے تیل زیادہ جلتا ہے تو اس پر وہ اپنی اہلیہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں ساتھ میں جب یہ بات سنی کہ یار یہ آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی بتی اتنی اونچی رکھنے پر ڈانٹ رہا ہے اور بیوی بھی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ویسے بھی بیوی کے لیے تو آدمی سب کچھ قربان کرتا تو کہا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو اتنی بات پر ڈانٹ رہا ہے بھلا وہ میری ضرورت کیا پوری کرے گا وہ تو وہیں سے واپس کچھ کہے بغیر دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جب کسی کے پاس بھیجتے ہیں کام کے لیے تو بعد میں پھر اس سے رپورٹ بھی لیتے کیا ہوا تمہارا وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا معلوم کرتے ہیں تو اس کو جب حضور کی مجلس میں وہ حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا تمہاری وہ ضرورت پوری ہوئی تو جو بات ہوئی تھی اس نے بتلا دی کہ اللہ کے رسول میں تو وہاں گیا لیکن وہاں یہ ہوا میں نے یہ آواز سنی تو میں نے یوں سوچا کہ جو آدمی چراغ کی بتی تیز کرنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹے وہ بھلا میری ضرورت کیا پوری کرے گا میں تو کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گیا سادن میں کہنے کا حضور نے پھر بھیجا اب تو حضور نے تاکید فرمائی تھی اس لیے اس نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ضرورت پیش کی اور انہوں نے اس کی ضرورت کو بہت وسعت قلبی کے ساتھ اس نے جو امید رکھی تھی اس سے کئی گنا مان دیا اس نے جب مل چکا تو اس کے بعد پھر اس نے حضرت عثمان سے جو مسئلہ جو بات ہوئی تھی وہ بتائی کل ایسا ہوا تھا اور میں تو واپس گیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے یوں سوچا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو اتنی بات پر ڈانٹتا ہو بھلا میری کیا ضرورت پوری کرے گا تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں ہم تو ان کے اشاروں پر جو ہے سب کچھ کرتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نہیں خرچہ کرنا تمہارا ایک پائی بھی ہم خرچ نہیں کریں اور وہ کہیں کہ خرچ کرو تو اپنا سارا مال لٹا دینے کے لیے یہ ہے مومن کی شان تمہارا یہ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مال کے معاملے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں پھر شادی کا موقع آتا ہے تو بے جا اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کوئی ان کو تنبیہ کرتا ہے تو کہا میں نے حلال طریقے سے میں نے خود کمائے میں کوئی لوٹ کر کے نہیں لایا ہوں اپنی کمائی ہے میں خرچہ کرتا ہوں بھائی ٹھیک ہے تمہاری کمائی ہے تم خرچہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے خرچہ کرنے کے معاملے میں بھی تم پر پابندی عائد کی ہے نہ خرچہ کرنا چاہیے وہاں آدمی خرچہ کرے بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ مال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال قیامت کے روز جو جن پانچ چیزوں کا سب سوال ہوگا اور جس کا جواب دیے بغیر آدمی کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے ان میں سے مال بھی ہے اور مال کے متعلق دو سوال ہوں گے کہاں سے کمایا اور کہاں سے گویا کمانے کے لیے بھی حلال طریقہ شریعت نے جو طریقہ کسی کو دھوکہ نہ دیا گیا ہو کسی کے ساتھ جو ہے فراڈ کر کے آپ نے مال حاصل نہ کیا ہو خرید و فروخت جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے شریعت نے جو اصول بتلا ہے ان کا پورا لحاظ کرنا چاہیے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس شریعت پر عمل تو مسجد میں آ کے کرنے کا ہے نماز پڑھنے کی ہے تو اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اس کو پڑھو باقی دکان تو مول صاحب کو کہ مول صاحب دکان بات تمہارے ہوں کام دکان پہ گیا مول صاحب کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہم وہاں اپنی مرضی سے چلا نہیں گاڑی یہ نہیں ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت دور اللہ برکتہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر ان سے عرض کیا حضرت مجھے اللہ کے فضل سے جو ہے مقام احسان حاصل ہو گیا مقام احسان یہ دراصل ایک حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی जिंदगी के आखिरी दौर में बुजुर्ग की खिदमत में आए थे और चंद सवालात किए थे। मल ईमान, ईमान क्या है? तो साहब ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह तो मानो, अल्लाह के रसूलों को मानो, उसके फरिश्तों के। तो इस्लाम क्या है? उसका जवाब, उसमें एक सवाल यह था मल एहसान, क्या एहसान क्या है? उसके जवाब में नबी करीम साहब ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो अल्लाह ताला तो तुम्हें देख ही नहीं। ये कैफियत होती है जब ये चीज बाकी को हासिल हो जाती है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला की जात का हर वक्त तसव्वुर उसके दिलो दिमाग में कायम रहता है। तो उसने आकर हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत मुझे जो है चाहिए एहसान का, ये हासिल हो गया। हजरत मुबारकबाद दी, अल्लाह मुबारक करे। लेकिन जरा ये बतलाओ, ये एहसान वाली सिफत खाली नमाज नहीं है क्या? घर में बीवी के साथ जब मामला पड़ता है या दुकान पर ग्राहकों के साथ जब आप खरीदो फरोख्त करते हैं तब भी ये सूरत है? इसमें तो खाली इतना ही आया है या ताबुद अल्लाह का अन्न का तरह, ताकि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे अल्लाह। इसलिए तो पूछा था, इसीलिए तो पूछा, शुरुआत इसी से होती है। लेकिन एक मोमिन या ईमान के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए कि वो घर में है, अपने बीवी बच्चों के साथ कोई मामला कर रहा है तो सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रही है, अगर मैं इनके साथ कोई ज्यादती करूंगा तो मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। पड़ोसी के साथ कोई मामला हो रहा है तो अभी दिलो दिमाग में यही तसव्वुर कायम हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और दुकान पर बैठे हुए सौदा कर रहे हैं ग्राहक से, वहां भी यही सोच, ये ना समझे कि मैं जिस तरह चाहूँ उसके पैसे लूटूं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये माल हासिल करने के लिए जो तरीके, वो भी इस्लाम ने जायज तरीके बतलाए कि इस तरह हलाल तरीके से, और उसको खर्च भी हलाल तरीके से करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल हलाल फरीज़तुन बादल, इस्लाम के बुनियादी फराइज के बाद हुआ ये हलाल माल को हासिल करना, ये भी एक अहम फरीजा है। इसको मामूली चीज मत समझो, बल्कि आदमी की जिंदगी जो है ना, उसके उसके फसाद और सलाह और उसके बना और बिगाड़ का मदार इसी कमाई के ऊपर है। आप जैसी कमाई करेंगे उसके मुताबिक आपके घर का निजाम चलेगा। चनांचे हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, तो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका मकूला निकल किया है, मन अकल हराम असद जवारे हो शाम लम यशा अलेमा लम यालम, कि जो आदमी हराम गिजा खाएगा उसके आजा अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, गुनाहों में मुब्तला होंगे, वो चाहे या न चाहे, उसको मालूम हो या न हो, यानी गैर इख्तियारी तौर पर एक ऑटोमेटिक उसका असर ये होगा हराम गिजा का, वो जब पेट में पहुंचेगी उससे जो खून तैयार होगा और उस खून से जो जज्बात, जो फिक्र, जो सोच पैदा होगी, वो आदमी को गुनाह के अंदर डालेगी। वो मन काना अकलहू हलाल अतात हो जवाले हो वो उससे कल खैरात, और जिसकी गिजा हलाल होगी आजा उसके इताअत और फरमाबरदारी करेंगे और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसको नेक कामों की तौफीक दी जाएगी। कुरान में भी बारी तआला फरमाते हैं या अय्युहर रुसुलु कुलु मिनत तय्यिबात वअमलु सालिह, ए रसूलों हलाल गिजा खाओ और नेक अमल करो। गोया हलाल गिजा का कुदरती नतीजा और असर ये होगा कि उसके नतीजे में आदमी नेक अमल करेगा। गोया आप हलाल गिजा इस्तेमाल करेंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, तब गोया उनको नेकी की राह पर डालने के लिए आपको कोई ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं होगा। उस हलाल गिजा की वजह से कुदरती तौर पर खुद आप भी और आपके अहलोयाल भी आसानी के साथ नेकी की राह पर लग जाएंगे। आजकल क्या होता है, लोग जब दीनी मजलिसों में बैठते हैं, वाद सुनते हैं और अपनी गुनाह वाली जिंदगी के ऊपर नदामत और अफसोस होता है और आदमी चाहता है कि मैं अब उसमें तब्दीली पैदा करूं और उसके लिए बहुत सी मरतबा कोशिश करने के बावजूद कामयाबी होती नहीं। उनके असबाब में से ये भी है कि उसके कमाई का जो तरीका है वो हलाल नहीं होता और उसकी वजह से आदमी अपने आप को नेकी की राह पर लाने में कामयाब नहीं होता। ये हलाल गिजा जो है कुदरती तौर पर आदमी से नेक काम करवाती है, नेक इरादे पैदा होते हैं, नेक काम से, और हराम गिजा की वजह से हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु तआला फरमाते हैं जब हराम लुकमा जाएगा तो दिल का नूर निकल जाता है, आदमी मसाविस और जो है बुरे ख्यालात का शिकार हो जाता है और उसके इरादे में कमजोरी आ जाती है, नेकी की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है और हलाल गिजा से कुदरती तौर पर नेक आमाल की तौफीक होती है। इस चुनांचे वाकयात उसकी शहादत देती है। हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गों में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह। ये हजरत शाह मोहम्मद इशाक साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। शाह अब्दुल अजीज साहब से भी कुछ पढ़ा और उसके बाद तकबीर उन्होंने हजरत शाह इशाक साहब रहमतुल्लाह अलैह से की और वो तकवा में बहुत मशहूर थे। पढ़ने के जमाने में भी उनका हाल ये था कि वो खाली रोटी खाते थे, सालन इस्तेमाल नहीं करते। हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में उनका तज़किरा किया है, चूंकि हजरत मौलाना यहिया साहब हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के वाली और हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो है वो ये हजरत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की नवासी है। तो और हजरत मौलाना यहिया और हजरत मौलाना इलियास साहब के वालिद जो थे हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो इन हजरत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुजाज हैं। बारा ये हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब उनका तकवा बड़ा मशहूर था और जो है वो हराम गिज़ा उनका पेट कबूली नहीं करता था। बेखबरी में भी अगर कोई हराम लुकमा खा लिया हो तो तय हो जाता। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आकृति में लिखा है कि कभी जब वो कांदला तशरीफ लाते थे तो खानदान के लोग दावत करते हुए डरते थे कि कहीं रुसवाई हो जाए, वरना इसलिए कि अगर जरा भी कोई गड़बड़ वाला हुआ फौरन हजरत वाकया भी लिखा है। दोबारा ये इनका तकवा बड़ा मशहूर था और इनकी आदत ये थी कि वो मुख्तलिफ देहातों में बस्तियों में जाते रहते थे और उन बस्तियों की जो गैर आबाद मस्जिदें हुआ करती थी जहाँ नमाजी न हो या कोई एकाध नमाज होती दूसरी नमाजें न होती हों, वहाँ जा कर के उसकी सफाई करते थे, वहाँ ठहरते थे, एक दिन क़याम करते थे और आसपास के लोगों को उस मस्जिद को आबाद करने की तलकीन करते थे। चनांचे इसी सिलसिले में एक मरतबा एक बस्ती में जाना हुआ और वो मस्जिद बहरान थी, ये अरवाहे सलासा में वाकया मौजूद है। तो हजरत ने फिर लोगों से कहा, लोगों ने बताया ये नवाब साहब यहाँ के हैं इस बस्ती के, अगर वो नमाज शुरू कर दें तो ये मस्जिद आबाद हो जाए। तो हजरत नवाब साहब के पास तशरीफ ले गए उनको नसीहत करने के लिए और उन नवाब साहब की आदत थी दाढ़ी और मूंछ चढ़ाने की। उस जमाने में उस एक मखसूस फैशन हुआ करता था कि दाढ़ी के बालों को मोड़ करके मुझसे वो एक खास जमाने के जो बड़े होते थे ये नवाब वगैरह बादशाह और ऊंचे घराने के लोग वो दाढ़ी और मूंछ चढ़ाया करते थे। अब सुबह जैसे आजकल सेटिंग करते हैं ना बालों की ऐसे उस तरह होता था। तो वो सुबह जब चढ़ाई जाती थी तो शाम तक बाकी रहती थी। अब इस दरमियान में अगर आदमी मुंह धोवे तो वो चढ़ाई हुई दाढ़ी और मूंछ बाकी नहीं रहती, इसलिए वो नवाब साहब नमाज नहीं पढ़ते थे तो वजू करना पड़ेगा। हजरत तशरीफ ले गए और हजरत ने नसीहत फरमाई तो नवाब साहब ने अपना उज़र बयान किया कि मैं अगर नमाज पढ़ना पढ़ूंगा तो वजू करना पड़ेगा और वजू में जो है वो जो दाढ़ी जो चढ़ाई हुई उतर जाती। हजरत ने फरमाया कि तुम ऐसे ही पढ़ो, उनको यूं कहा और अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ये तेरा बंदा तुझसे दूर था, तेरे घर में लाना मेरे हाथ, मैंने मेहनत की, अब उस बाकी रखना तेरा काम। महाराज उन नवाब साहब ने वजू किया, पहली मरतबा नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज का वक्त आया तो सोचा कि जो है अगर नमाज पढ़ना ही है तो फिर ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा बगैर वजू के, वजू करके ही पढ़ू वजू और मस्जिद भी आबाद होगी। दोबारा उनका एक तरीका था कि इस तरह आबादियों में जाते थे और ऐसी जो है वीरान मस्जिदें होती थी उनको आबाद करने की कोशिश करती हुई है। हजरत माना इस्माइल साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत माना इजाज साहब के जो वालिद बुजुर्गवार थे, गोया उन्होंने भी ये चीज़ उन्हीं से अपने शेख से सीखी थी और इसी बुनियाद पर भी वो वहाँ निजामुद्दीन की बंगला वाली मस्जिद में आकर के रहे थे। खैर दोबारा एक मरतबा एक बस्ती में गए और वहाँ ऐसी एक मस्जिद में जाकर के ठहरे और वहाँ देखा कोई दिन भर नजर नहीं आया। शाम को मगरिब के वक्त हो गया था, नमाज पढ़ ली, मगरिब के थोड़ी देर के बाद एक मजदूर किस्म का आदमी आया, कुएं से डोल के जरिए से पानी निकाला, वजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर जब वापस जाने लगा तो देखा कोई मुसाफिर है। पुराने जमाने में हमारे बिहार और गुजरात के उनके जो लोग पुराने मुद्दे हैं वो जानते हैं कि कोई मुसाफिर ऐसे मुसलमानों की बस्ती में मुसलमान मुसाफिर आता था तो मस्जिद ही के अंदर ठहरता था। हम लोग गाँव की बस्ती के कुछ लोग ऐसे होते थे जो ऐसे मुसाफिरों की तलाश में उनकी मेज़बानी को अपने लिए गोया शहादत समझते थे। वो आदमी ने देखा कि ये कोई मुसाफिर है, नमाज के बाद वो घर से 3 रोटियां लाया और पेश की। अब हजरत ने खाई और हजरत ठहर गए, उनकी आदत नहीं थी मजीद ठहरने की। दूसरे दिन ठहर गए, दूसरे दिन भी दिन भर कोई नजर नहीं आया। शाम को उसी कल की तरह फिर थोड़ी देर के बाद मगरिब हो चुकने के वही आदमी आया, नमाज पढ़ी, ताकते हुए देखा कि वो कल वाला मुसाफिर अभी भी है, वो हजरत को नहीं पहचानता। वो घर गया, 2 रोटियां ला करके पेश की, हजरत ने फिर ठहर गए। तीसरे दिन फिर इसी तरह हुआ और आज 1 रोटी लाकर पेश करते हुए हाथ जोड़ के कहता है भाई मुसाफिर अल्लाह वास्ते तू यहाँ से जा। वैसे भी 3 दिन से ज्यादा का आदमी का लोग नहीं, शरीयत ने भी मना तो ये नहीं किया, अमन नहीं किया। तो हजरत ने पूछा भाई सच सच बता बात क्या है। तो उसने अर्ज किया कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी के जरिए से इतना हासिल कर लेता हूँ जिससे 3 रोटियां बनती है, घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, हम एक एक रोटी खा लेते हैं, गुजारा करते हैं। पहले दिन जब आपको देखा तो 3 रोटियां लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी और हम तीनों ने फाका दिया। देखो ये घर में कुछ नहीं है लेकिन मुसाफिर का जो खिदमत कर रहे हैं क्या हम ऐसा कर सकते है। तुम्हारा फिर दूसरे दिन भी आपको जब देखा तो बच्चे में फाका करने की ताकत थी नहीं तो उन 3 में से बच्चे के हिस्से की रोटी तो उसको दी और 2 मेरी और बीवी के हिस्से की दूसरे दिन आपको ना कर दी। आज तीसरा दिन है और आज बीवी में भी फाका करने की ताकत नहीं इसलिए उसके हिस्से की रोटी भी उसको दी, मेरे हिस्से की 1 रोटी लाकर पेश की, कल मेरे में भी ताकत इसलिए मैं कहता हूँ मेहरबानी करती जाओ। हजरत ने फरमाया भाई देखो मेरी आदत भी किसी जगह 1 दिन से ज्यादा ठहरने की नहीं है लेकिन पहले दिन जब 3 रोटियां लाकर तुमने पेश की मैंने उसको खाया तो रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस रात मैंने अपने दिल में ऐसे अनवारात और ऐसी बरकतें महसूस की, पूरी जिंदगी में ऐसे अनवारात कभी महसूस नहीं किए। इबादत के अंदर वो लज्जत आई जिसको बयान नहीं कर सकता। तो क्या जब ये बात मैंने महसूस की तो मैंने सोचा कि भाई ये गिजा तो खाने जैसी है इसलिए मैं ठहर गया। हकीकत तो यह है कि हलाल गिजा का कुदरती नहीं औलाद भी उससे नेक बनती है। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह सब जानते हैं, नाम से वाकिफ है। हजरत जो है वहाँ दाबेल में 17 साल तक हजरत ने दर्स दिया है। हजरत अल्लामा मुशाकी रहमतुल्लाह के साथ तशरीफ लाए थे, मुदर्रिस भी थे और हजरत के दर्स में पांच साल शरीक रहे और वो जो दरसी तकरीर है अगर की बुखारी की फैजुल बारी के नाम से उसको जब्त किया, शाया कराया और फिर उसके बाद आप मुदरिस बनाए, फिर बाद में भी रहे 17 साल तक और जो है बड़े साहिब कशफ और उनके अजीब गरीब उनके कशफ के वाकयात हैं। तकसीम हिंद के बाद वह पाकिस्तान चले गए और वहाँ से फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। उनकी एक करामत वफात के बाद ये लोग बतलाते हैं कि इंतकाल के बाद जिस कब्र में दफन किया गया था वो वहाँ दस्तूर यह है जन्नतुल बकी के अंदर कि जब किसी मुर्दे को किसी कब्र में दफन किया जाता है तो तारीख नोट कर ली जाती है 6 महीने के बाद फिर उस कब्र में दूसरा मुर्दा दफन किया जाता है। उनको जिस कब्र में दफन किया गया था जब 6 महीने के बाद दूसरा मुर्दा दफन करने के लिए उस कब्र को खोला गया तो उनकी लाश तो क्या दफन भी हो बहुत कोई दाग भी नहीं था तो उसको बंद कर दिया गया। फिर 6 महीने के बाद फिर इसी तरह तीसरी और तबाक की बाकायदा उसके ऊपर लिख दिया गया कि आइंदा इस कब्र को खोला जाए। हजरत मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे पुलिस इंस्पेक्टर थे, आप जानते हैं पुलिस का मुकदमा कैसा होता है, वहाँ बरेली के अंदर उनकी पोस्ट थी और वहाँ उन्होंने इनको अपने बेटे को स्कूल के अंदर दाखिल किया था असरी तालीम लेने के लिए और उसी जमाने में वहाँ हजरत गए थानवी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा हुआ और शायद छुट्टियाँ होगी इलाहाबाद में जो है जुमा की नमाज में हजरत हकीमुल उम्मत का बयान था, हजरत महा बद्र आलम साहब जो बच्चे थे वो भी बयान में शरीक हुए। हजरत का बयान सुनने के बाद उनको शौक पैदा हुआ दीनी इल्म हासिल करने का। तो वहाँ से मस्जिद से आने के बाद वाली साहब से कहा कि मैं तो अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मदरसे में जाऊँगा पढ़ने के लिए। वाली साहब ने चूँकि वो तो दुनिया का इल्म पढ़े हुए थे, दुनियादार आदमी थे, लेकिन बारह बुजुर्गों से ताल्लुक था, हजरत माना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक, उनसे मशवरा वगैरह भी बराबर करते थे, तालिबान सैयद ताहूर हुसैन नाम था ऐसा याद करता है। बहरहाल तो इन्होंने मना किया तो उन्होंने समझाया नहीं समझे तो पिटाई की। तो इन्होंने कहा तो ना बद्र आलम साहब ने बच्चा मार डालो तो भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर ये जो है मामला इन्होंने हजरत माना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया। हजरत ने फरमाया भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बच्चा जब खुद ही दीन का इल्म हासिल करना चाहता है तो तुम काय को रोकते हो। चुनांचे हजरत के मशवरे से दिल्ली को मदारिस उलूम में दाखिल किया गया, वहाँ तालीम मुकम्मल की, उसके बाद आप देवबंदी शिबे गए थे शाह साहब की खिदमत में। बारा ये जब मैं बताना ये चाहता था कि उनके वालिद जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके मुताबिक हजरत महा बद्र आलम साहब के साहबजादे हजरत महाराणा आफ्ताब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, एक मरतबा नाबेद कई साल पहले उनका भी इंतकाल हो गया तो शिव लाए थे क्याम रहा, उन्होंने बहुत सारे वाकयात सुनाए थे। तो उनके मुताबिक बतलाया कि उनका जो यौमिया जिक्र का मामूल इसमें रात 90,000 पुलिस इंस्पेक्टर कभी कोई रिश्वत नहीं ली, कभी कोई गलत इस काम नहीं किया, मौत के वक्त अपने औलाद को कहा कि मैंने तुम्हारे हलक से नीचे एक दाना भी हराम का उतरने नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए दौलत छोड़ के नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैंने तुमको हमेशा हलाल दिया खिलाई। अब देखो कि हलाल दिया का क्या असर होता है। तो बहरहाल हलाल दिया हम अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, घर के लोग नेक बने, तो हलाल कमाई का अगर एहतमाम करेंगे तो ये चीज बड़ी आसान। हमारे मेरे इल्म में ऐसे कई लोग हैं जिनके घरों घर के जिम्मेदारों ने हलाल का एहतमाम किया, अल्लाह ताला ने उनकी औलादों को इल्म से नवाजा, दीनी खिदमात जो है अल्लाह ताला उनसे इल्मी खिदमात दे रहे हैं और बड़ी ऊँची इल्मी खिदमात दे रहे हैं। बारा ये हलाल गिजा जो है तो उसका कुदरती असर यही होता है। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से मैंने खुद सुना, उनके वाज में भी सुना, उनकी मजलिस में भी सुना और उनके खुतबात में भी ये किस्सा मौजूद है कि देवबंद में एक बुजुर्ग थे शाहजी अब्दुल्ला, उन शाहजी अब्दुल्ला का जरिया माश जो था कमाई का जो जरिया वो घास काट करके लाते थे गठड़ी और बेचते और उनकी वो घास की जो गठड़ी थी उसकी कीमत भी मुतायन थी चार आने या चार पैसे। वो बस उन चार पैसों में से एक तो वही अल्लाह के नाम पर खर्च कर देते थे, एक अपनी बेटी को देते थे, एक अपनी जरूरत के लिए और एक को जमा। और जब कुछ अच्छी खासी रकम हो जाती थी तो उस जमाने के देवबंद के जो अकाबिर होते थे उनकी दावत करते थे, हजरत नानोती, हजरत माँ याकूब साहब नानोती और दूसरे अकाबिर, हजरत माँ याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमें इन शाहजी की दावत का इंतजार रहता है, हर महीने डेढ़ महीने में जब करते तो उनकी दावत खाने के बाद दो दो महीने तक हमारे कल्ब के अंदर अनवारात रहते और नेक काम करने के जज्बात, ये नेकी का काम कर लूँ वो नेकी का काम कर लूँ, गोया उसका कुदरती असर होता है। देवबंद के लोग भी इन्हीं से घास खरीदने की कोशिश करते थे और वो जब जाते थे बाजार घास लेने के लिए अगर वो नहीं आए होते थे तो लोग इंतजार करते और दूर से आते हुए नजर आते तो दौड़ते थे, खरीदने के लिए आने वाले कई होते थे जो पहले जाके बच्चों के हाथ लगा दी डाली से बचना पैसा। दोबारा ये हलाल गिजा का कुदरती असर और हराम गिजा जो है उसका कुदरती असर यही होगा कि आदमी गुनाह के ऊपर हमारा होता है। हजरत माना मोहम्मद याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा एक मरतबा किसी आदमी ने आपकी दावत की, तशरीफ ले गए, खाना जब शुरू किया पहला ही लुकमा हलक से नीचे उतरा, उन्होंने महसूस कर लिया कि इसका इसकी कमाई जो है मुश्तबे है डाउटफुल, या पूरी खालिश हलाल नहीं हराम का अंदर शुभ, खालिश हराम भी नहीं, बीच बीच का जिसको कहते अंदर गड़बड़ वाली डाउटफुल है। उन्होंने खाना अपना हाथ रोक दिया लेकिन फरमाते थे उस एक लुकमे का असर ये रहा कि कई दिन तक दिल में गुनाह के जज्बात पैदा होते रहे, ये गुनाह कर लूं वो गुनाह कर लूं, ये हराम किताब है वो बाकायदा कुदरती हराम कमाई का यही असर होता है। इसीलिए हराम से बचने का बड़ा अहतमाम था हमारे असलाफ ने। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया हिकायत सहाबा में आपने सुना होगा। हजरत का एक गुलाम था जिसको खिरात पर उठा रखा था, खिरात पर उठाने का मतलब यह है कि गोया उस जमाने में जो गुलाम होते थे बहुत सारे गुलाम तो अपनी जरूरत के खिदमत के गुलामों के अलावा बाकी गुलामों को आका यूँ कह देते थे कि तुमको जो हुनर आता है कमाई करो और उसमें से इतना हमको दे देना इतना मुकर्रर करते थे। तो जैसे गाड़ी वाले होते गाड़ी किसी को दे दी का उनको रोजाना 100 अंडे देना बाकी कमाई तुम्हारी इस तरह। दोबारा तो वो गुलाम एक मरतबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास खाने की चीज लेकर के आया पेश की, हजरत अबू बकर ने एक लुकमा उठाकर मुंह में रख लिया। उस गुलाम ने अर्ज किया हजरत आप तो रोजाना पूछते हैं कहाँ से लाया, आज नहीं पूछा, क्या बता दे कहाँ से लाया, पापा था भूख कई वक्त से थी इसलिए पूछा पूछना भूल गया। कहा मेरे जमाने जाहिलियत में कहानत थी, कहानत का मतलब यह है आने वाले हालात के मुताबिक क्या कहते हैं
ज्योतिष,
तो उसमें जमाने जाहिलियत में उसका बड़ा रिवाज था, लोग ऐसे कहानी हुआ करते थे और लोग उनके पास जाते थे और वो आने वाली इस तरह की बातें बताते थे और जाने वाले उनकी खिदमत में लदिया पेश करते थे मुआवजा उसका बदला। तो कहते हैं कि एक आदमी को मैंने कहानत की थी और मैं कहानत करना जानता देखा ऐसे ही उसको धोखा दिया, एक तो कहानत खुद गलत और फिर उसमें भी धोखा करेला और नीम चढ़ा जैसा कि मेरे पास उसके पास उस वक्त देने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने ही वादा किया था आइंदा किसी मौके पर दूंगा। आज मैं उस इलाके से गुजर रहा था वहां कोई तकलीफ थी खाना पक रहा था, ये खाना उन लोगों ने मुझे इसी में दिया, अब याद ये मुसलमान हो चुका है ये खाना। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना फरमाया तू तो मुझे हलाक करके रख दे, फौरन आपने मुंह में उंगली डाली तो एक लुकमा जो हलक से नीचे उतरा है उसको बाहर निकाले, लेकिन एक तो लुकमा और वो भी कई वक्त के फाके और भूख के बाद गया था, भला ऐसे निकलता। तो किसी ने मशवरा ये दिया कि आप पानी पिए कुछ और फिर तय करें। चला से एक प्याले में पानी मंगवाया, पानी पीने के बाद फिर बड़ी कोशिश के बाद तय हुई और वो लुकमा जो है बाहर। जब ये हुआ तो एक आदमी ने हजरत अबू बकर से पूछा, हजरत एक तो लुकमा था और वो भी आपने जो है उसको निकालने के लिए इतनी तकलीफ उठाई। तो उसकी बात सुनकर हजरत अबू बकर ने जो जवाब दिया वो जरा हमारे लिए जो है एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने फरमाया, ये लुकमा अगर मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं निकाल के रहता, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से सुना है कि आदमी के जिस्म का वो गोश्त जो हराम माल से पल करके तैयार हुआ हो, जहन्नम की आग उसकी ज्यादा हमदार है। मुझे डर हुआ कि कहीं इस लुकमे से मेरे जिस्म का कोई हिस्सा तैयार होकर मैं इस वही का विश्वास नहीं। दूसरा का इशार हम और आप भी सुनते हैं, लेकिन उसका क्या वो असर जो इन हजरात ने लिया हम लेते हैं। तो यह हराम रिजा से बचने के मामले में बहुत ज्यादा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हालात में लिखा है कि कूफा में, कूफा के जंगलों में कोई तिजारती काफिला था, लुटेरों ने उसको लूट लिया और उस काफले का जो माल लुटा गया था उस माल में कुछ बकरियां भी थी और वो बकरियां कूफा के बाजार में मार्केट में बिकी होंगी। ये बात लोगों में फैली कि वो लूट वाले माल की कुछ बकरियां यहाँ के मार्केट में बिकी है। इमाम साहब को जब इतला हुई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपने तहकीक की कि बकरी की उम्र क्या होती है। मालूम है 6 साल। तो कूफा में रहते हुए 6 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, कहीं वो लूट वाली बकरी ना आ जाए, इससे अपने आप को बचाने के लिए। इतना ज्यादा हराम से बचने का एहतमाम आपके एक पार्टनर थे हफ्सा इब्न अब्दुल रहमान। तो इमाम साहब की तिजारत कपड़े की थी। एक मरतबा चंद थान कपड़े के ताके उन्होंने अपने पार्टनर के पास भिजवाए और उस थानों में से एक थान के मुताबिक इसमें हैब है, जब बेचो तो खरीदार को वह हैब बतला करके बेचो। अब उन्होंने बेच दिया और खरीदार को बतलाना भूल गए, ये भी नहीं कि जानबूझ के नहीं बतलाया, वाकई तो उनको याद ही नहीं रहा। और उसकी कीमत थी 20,000 दिरहम। समझिए आजकल के हिसाब से 63 या 64 किलो चांदी होती है। तो वो जब वो 20,000 दिरहम लेकर के आए, इमाम साहब ने पहला ही सवाल किया तो वह है बतलाया कि वो तो मैं भूल गया, किसको बेचा था। अब वो भी आदमी तलाश किया कोई मिला नहीं। इमाम साहब ने वो पूरी रकम जो है सदका कर दी अपने इस्तेमाल में। हकीकत यह है कि हराम से बचाने का बहुत ज्यादा हमारे अकाबिर के यहाँ एहतमाम हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मेरा मकसद तो यह है कि हम अपनी कमाई को सही और दुरुस्त करने का एहतमाम करें। कौन से तरीके हलाल हैं, कौन से हराम हैं, अल्लाह ताला ने उलमा के यहाँ पैदा किए हैं और मुफ्तियान मौजूद हैं। कोई भी मामला जब हो तो जब तक कि उसके मुताबिक तहकीक न कर लें वहाँ तक उसका कोई इख्तियार न किया जाए। अपने आप को जितना ज़्यादा हराम से बचाने का एहतमाम करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपकी जिंदगियों को जो है शरीयत के मुताबिक बनाएंगे। इसकी तरफ तवज्जो की जाए इंशाअल्लाह। दूसरा जूज जो है हदीस के अंदर, पहला जूज ये तो हुआ मन कला तय्यबन हलाल गिज़ा खाई, दूसरे जो जूज हैं वो अमेला फी सुन्नती सुन्नत के मुताबिक अमल किया, वह अमीन अन्नास बवाए कहूँ और लोग उसकी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों से महफूज रहे। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इन दो जूज के मुताबिक अर्ज करेंगे। उनका वक्त ख़त्म हो रहा है और बच्चा जिसका कुरान खत्म करने का उसको मिला।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر معاصی اخلاق سے نزیل فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخر کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے نکالت فرما ہمیں حلال اور کشادہ اللہ روزی عطا فرما اللہ ہمیں کسی کا محتاج و مستلزم فرما حرام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ جس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے متعین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے اپنے خدا فرما جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان ہے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار اور گفتار برے آلات اور افعال بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری مدد فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سکتہ جاریہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا لے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو پوری فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو وحی فرما جو کس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके औलादे नाफरमान है, जिनके औलादों को तू तेरा और उनके माँ बाप का मुतीउ फरमा बरदार बनाकर माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा। जिनके औलादे शादी की उम्रों को पहुंच चुकी हैं, सालह जोड़ अता फरमा कर उनके निकाह की सूरत पैदा फरमा। जिनकी इज्तिवाजी जिंदगियां बल्खी का शिकार हैं, अल्लाह उनको इज्तिवाजी जिंदगी की खुशगवारियां अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहां कहीं भी हो, अल्लाह उसके ईमान और इस्लाम की, जानो माल की, इज्जत और आबरू की, अहल आयाल की, तिजारत और दराज और कारोबार की, हर चीज की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई उनसे मांगी, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ मौजूद तेरे तमाम बंदों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। आज तक तुझसे मांग कर कभी मालूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी मालूम फरमा। रब्बना जीना कताइबीन कना तम कना खाइबीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम।